इशिका घर आई ही थी कि सिद्धांत उसके सामने आ गया। हमेशा की तरह वो इशिका के साथ बदतमीजी कर रहा था। इशिका के उसे सख्त जवाब देने और सिद्धांत के साथ काम करने से मना करने पर वो काफी भड़क गया था। सिद्धांत इशिका पर हाथ उठाने वाला था कि बीच में अभिमान आ गया। अभिमान और सिद्धांत के बीच बहसबाजी के साथ थोड़ी फाइट भी हुई। इससे पहले कि उनके बीच की लड़ाई बढ़ती, इशिका अभिमान को खींचकर ऊपर ले गई। वो नहीं चाहती थी कि अभिमान के गुस्से का फायदा सिद्धांत उठा ले। थोड़ी देर में इशिका को सिद्धांत के इरादे समझ में आ गए थे। वो जानबूझकर अभिमान को भड़काकर इस फाइट को बढ़ाना चाहता था। ऊपर आने के बाद इशिका और अभिमान के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगी। इशिका ने उसे यही समझाया कि सिद्धांत जानबूझकर उसे उकसा रहा है और उसका इरादा कुछ और है। शायद यही वजह थी कि अभिमन्यु खुद मुंबई आया था ताकि वो अभिमान को प्रोटेक्ट कर सके। इशिका के बताने पर अभिमान के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने पूछा, मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने या मुझे राजवंश खानदान की प्रॉपर्टी से बेदखल करने के अलावा उनके और क्या मकसद हो सकते हैं? मैं उनके किसी काम का नहीं हूँ। इससे पहले कि इशिका उसे कुछ कहती, वहां अभिमन्यु की सख्त आवाज गूंजी। वो उनसे कुछ दूर खड़ा था और उनकी बातें सुन चुका था। अभिमन्यु बोला, और ये किसने कहा तुम उनके किसी काम के नहीं हो? अपने गुस्से में ये भी भूल गए कि जब तुम्हें तुम्हारे नाम के शेयर्स मिले थे, तब साफ यही कहा गया था कि तुम कभी राजवंश एम्पायर से कंपटीशन नहीं करोगे। अगर तुमने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ अपने डैड का बदला लेने की कोशिश की तो तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा और साथ ही तुम्हारी सारी एसेट्स उनके पास चली जाएंगी। याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, शेयर ट्रांसफ़र करने के क्लॉजेज में साफ लिखा हुआ था, तुमने किसी भी राजवंश फैमिली के मेंबर को फिजिकली हार्म किया तो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर तुम्हें राजवंश एम्पायर के लिए काम करना पड़ेगा, वो भी एक एम्प्लॉय की तरह सैलरी पर। लेकिन ये सब नहीं था, मुझे अच्छे से याद है चाचू, मैंने पूरे क्लॉजेस पढ़े थे, अभिमान जल्दी से बोला और अभिमन्यु के पास आ गया था। जब तुमने साइन किए थे तब नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें ऐड करवाया गया। राजवंश फैमिली के मेंबर्स तो तुम ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हो। अब तक तुम उन्हें बहुत हल्के में ले रहे थे अभिमान, लेकिन पिछली बार विक्रम अंकल ने जब दिग्विजय दादू को कॉल किया था तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और उन बदली हुई शर्तों के बारे में बताया था। पूरी बात सुनने के बाद दादू भी काफ़ी गुस्सा हुए थे, लेकिन विक्रम अंकल ने सफाई में यही कहा था कि वो तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्हें डर था कि तुम उनके किसी दुश्मन के साथ ना मिल जाओ, अभिमन्यु ने बताया। राजवंश फैमिली के चालाकियों को देखकर अभिमान सन रह गया था। उसके चेहरे पर कड़वाहट के भाव थे। वैसे तो ये नया नहीं था, उसके साथ हमेशा से अन्याय होता हुआ आ रहा था और वो लोग उसे और नीचा गिराने की कोशिश करते थे, पर वो इस हद तक गिर जाएंगे ये अभिमान ने नहीं सोचा था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों तक के साथ छेड़छाड़ कर ली थी। अब उसे ये समझ आ पा रहा था कि सिद्धांत उसे उकसाता क्यों रहता था। सिद्धांत यही चाहता था कि मारपीट के दौरान अभिमान उसे बुरी तरह घायल कर दे। हाँ, उसके बाद फिजिकली वो रिकवर हो सकता था, पर बदले में उन्हें अभिमान की प्रॉपर्टी मिल जाती। अभिमान हमेशा से इंटेलिजेंट था। सिद्धांत यही चाहता था कि अगर अभिमान उनके लिए काम करता तो कंपनी को बहुत फायदा होता। ये शर्त खास सिद्धांत ने ही जुड़वाई थी। अभिमान पूरी बातों के बारे में सोच रहा था तो वहीं अभिमन्यु इशिका के पास पहुंचा। थोड़ी देर पहले नीचे जो भी हुआ था उसके बारे में उसे हाउस हेल्पर से पता चल गया था। अभिमन्यु ने इशिका के गाल पर हाथ रखा और कैरिंग वे में कहा, तुम ठीक हो ना? डोंट वरी, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, वैसे अभिमान मेरे साथ था, इशिका ने बताया। इशिका के कहते ही अभिमन्यु अभिमान की तरफ पलटा तो वो अभी भी खोया हुआ खड़ा था। अभिमन्यु ने सिर झटका और तेज आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि पिछले 5 सालों में तुम खुद को पूरी तरह तैयार कर लोगे, अभी तो ये शुरुआत है अभिमान, आगे ये लोग और भी चाले चलेंगे तो तुम्हें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। मैं खुद को तैयार ही रखता हूँ चाचू, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सच कहूँ तो मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर फैमिली में सिर्फ 2 लोग थे जो मुझे समझते थे। दादू को उन्होंने वैसे मजबूर कर दिया और अब तो आप भी यहाँ मुझे ही रोकने के लिए आए हो, अभिमान ने कड़वाहट से कहा। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा, उन दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इशिका ने गहरी सांस ली और अभिमान से कहा, और तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हें रोकने के लिए आए हैं? जो भी करना है करते रहो, पर सामने से नहीं। तुम भी उनकी तरह एक अच्छी फैमिली और खुश रहने का दिखावा क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है अभिमन्यु ने कभी सीधे से राजवंश फैमिली से लड़ाई नहीं की थी। बहुत कम मौकों पर उसने जवाब दिया था ताकि परिवार में शांति बनी रहे। जब भी कोई उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो अभिमन्यु को उन्हें जवाब देना अच्छे से आता था। अभिमान ने इशिका की बात पर हामी भरी और फिर एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा। वो जाकर अभिमन्यु के गले लग गया था। सिर्फ अभिमन्यु ही था जो उसे समझता था और उसके साथ उसे अपनापन महसूस होता था। क्या हमें इसी फैमिली में जन्म लेना जरूरी था? अभिमान ने मायूस स्वर में कहा। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर छोड़ो, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम तो मैंने तुम्हें बता दी है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझा दिया है। उम्मीद है कि आगे से तुम अवेयर रहोगे। अभिमन्यु ने अभिमान की पीठ सहलाई और फिर उससे अलग हो गया था। अभिमान ने हाँ में सिर हिलाया। इशिका और अभिमन्यु ने महसूस किया कि अभिमान अभी भी काफी परेशान नजर आ रहा था। वो खोया हुआ लग रहा था। पहले भी अभिमान के सामने उसके परिवार की चालाकियां और गंदी ट्रिक आई थी, पर वो इतना निराश कभी नहीं दिखाई दिया था। कुछ और ऐसा हुआ है जिसके बारे में तुम्हें मुझे बताना चाहिए? अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में पूछा। मिस्टर सिंघानिया का मैसेज आया था, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मुझे डर है कि वो मुझे आशी के साथ रहने के लिए फोर्स ना करें। बाकी अगर तलाक के लिए वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभिमान ने बताया। अभिमन्यु भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, लेकिन मिस्टर आशुतोष सिंघानिया तो तुमसे नफरत करते हैं। वही तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा। अपने बचपने में मुझसे गलती हो गई और मैं उससे पीछे भी नहीं हट रहा हूँ। मुझे बस उनकी चुपती हुई निगाहें महसूस नहीं करनी है। जब भी उनके सामने जाता हूँ तो वो दिन आज भी मेरे सामने आ जाता है, अभिमान ने मायूसी से कहा। अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो इशिका अभिमान के बारे में नहीं जानती थी। फिलहाल उसने कुछ पूछना सही भी नहीं समझा। वहीं अभिमन्यु ने पूरी बात सुनने के बाद कुछ पल सोचा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देखते हैं आखिर मिस्टर सिंघानिया चाहते क्या है। थैंक यू सो मच चाचू, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और मुझे संभालने के लिए, अभिमान ने हल्का मुस्कुराकर कहा और फिर अपने कमरे में चला गया था। उसके जाते ही अभिमन्यु इशिका के पास आया। इशिका के मन में बहुत कुछ जानने की इच्छा थी और ये उसके चेहरे से साफ जाहिर हो गया था। इशिका का उलझन भरा चेहरा देखकर अभिमन्यु हंस पड़ा था, तो इशिका ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, मजाक बना रहे हो तुम मेरा, तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी की लाइफ और बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पर प्रेगनेंसी में पता नहीं मैं इतनी इंपेशेंट क्यों हो जाती हूँ, और ट्रस्ट मी, जब तुम इस तरह बेचैन होती हो तो और भी ज्यादा क्यूट लगती हो, अभिमन्यु बोला। वो उसे तंग करने लगा था। अभिमन्यु ने इशिका को अपने करीब खींचकर कहा, अच्छा बताओ ना, प्रेगनेंसी में तुम्हें और कौन सी बातें परेशान करती हैं? कहीं पिछली बार की तरह ये तो नहीं सोचती कि तुम्हारा वेट बढ़ गया तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा?
अभिमन्यु प्लीज मेरा मजाक बनाना बंद करो, वो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा। बताओ ना क्या हुआ था अभिमान के साथ, क्यों आशी के डैड उससे नफरत करते हैं? इशिका ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि अभिमान राजवंश जितना इंटेलिजेंट है उतना ही गड़बड़ी का पिटारा है। अगर कुछ सही भी करने जाएगा तो इसके हाथों गलत ही होने वाला है। आशी मिस्टर सिंघानिया की रियल डॉटर नहीं है, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। उनकी रियल डॉटर इस दुनिया में नहीं रही और उसकी वजह अभिमान है, अभिमन्यु ने बताया, तो इशिका के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। फिर तो मैं मिस्टर सिंघानिया का साथ दूंगी। जिस शख्स की वजह से आप अपने बच्चों को खो दो उसे माफ करना आसान नहीं होता है, चाहे उसने ये अनजाने में ही क्यों ना किया हो, इशिका ने कड़वाहट से कहा। उसके दिमाग में पार्थ की याद ताज़ा हो गई थी। जब पार्थ माफ़ी मांगने के लिए आया था तब उसने यही कहा था कि ये सब इशिका के इम्पल्सिव बिहेवियर और हड़बड़ी की वजह से हुआ था, जबकि सच तो ये था जो भी हुआ उसकी वजह पार्थ था। उसकी वजह से इशिका ने अपने दोनों बच्चों को पैदा होने से पहले ही खो दिया था। इशिका कहीं ना कहीं मिस्टर सिंघानिया को खुद से जोड़ने लगी थी। ऐसे में अगर मिस्टर सिंघानिया अभिमान से नफरत भी करते थे तो इशिका को कुछ गलत नहीं लगा। अभिमन्यु नहीं चाहता था कि इशिका इस बारे में और सोचे। उसने अचानक इशिका को अपनी बाहों में उठाया और कहा, जो भी हुआ वो मिस्टर सिंघानिया और अभिमान के बीच की बात है, ठीक है, मैं चलकर उनसे बात कर लूंगा ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो। अब तुम इस बारे में सोचना बंद करोगी। हालांकि इशिका के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया था। अभिमन्यु इशिका को अपने कमरे में लेकर चला गया तो वही कोई उन्हें छुपकर देख रहा था। उनके जाते ही वो बाहर निकल गया था और वो सिद्धांत था। अभिमान और अभिमन्यु के बीच पहले जो बातें हुई थी उसके बारे में सिद्धांत ने नहीं सुना था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि मिस्टर सिंघानिया ने अभिमान को मिलने के लिए बुलाया है। सिद्धांत ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तो उसने मिस्टर सिंघानिया को मजबूर कर ही दिया। सिद्धांत जल्दी से अपने फ्लोर की बैल्कनी में गया और उसने तुरंत आशी को कॉल किया। आशी के कॉल रिसीव करते ही सिद्धांत जल्दी से बोला, मुझे लगा हम पार्टनर्स हैं और अब तक मिलकर काम कर रहे हैं। तुम शायद भूल रही हो कि वो मैं ही था जिसने हमारी फैमिली के सामने तुम्हारी और अभिमान की शादी के बारे में बताया था। तुम तो इतनी जल्दी मुझे भूल गई। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है सिद्धांत भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे टॉन्ट मार रहे हो, आशी ने हैरानी भरे लहजे में कहा। अब तक वो भी नहीं जानती थी कि अभिमान को उसके घर बुलाया गया है। अच्छा, क्या तुम नहीं जानती कि मिस्टर सिंघानिया ने अभिमान को डिनर के लिए बुलाया है? आशी, मुझे डबल क्रॉस मत करना। आज अगर मेरी फैमिली तुम्हें इस घर की बहू बनने के लिए सपोर्ट कर रही है तो इसका कारण सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें अभिमान की हर हरकत पर नजर रखनी होगी कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहा है। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं अभिमान को तुम्हें एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दूंगा, सिद्धांत ने धीमी आवाज में कहा। ट्रस्ट मी भैया, मुझे इस बारे में नहीं पता था, शायद पापा के दिमाग में कुछ और चल रहा है। मुझे तो डर है कि वो मेरा और अभिमान का डिवोर्स ना करवा दे,
आशी ने परेशान लहजे में कहा। जब वो आशुतोष के पास गई थी तो उसने उसकी कहानी पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। नहीं करवाएंगे, मैंने तुम्हें जो कहानी बताने को कहा था वो उनकी खुद की कहानी है। काजल सिंघानिया ऐसा कभी नहीं होने देगी कि जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। चलो अब फोन रखो और मुझे गलती से भी धोखा मत देना, वरना मुझे गुस्सा आने पर मैं सब बर्बाद कर दूंगा, सिद्धांत ने उसे धमकाते हुए कहा और फिर कॉल कट कर दिया था। अभिमान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अगर आशी हर रोज उसके पास आकर उसे शादी के लिए फोर्स करती थी तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ सिद्धांत का भी था। वो आशी की हर संभव मदद कर रहा था। दूसरी तरफ आशिका घर पहुंच चुकी थी। वो पहले ही लेट आई थी। उसके बावजूद आराम करने के बजाय आशिका रिहान के साथ कॉल पर थी और काम कर रही थी। मैंने हमारे क्लाइंट एक्स का काम निपटा दिया है, रिहान बोला। वो इसी तरह कोड वर्ड में अपने क्लाइंट्स के नाम बोलते थे। डोंट वरी, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपने प्रोजेक्ट छोड़े हैं तो मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम्हें इस तरह बार बार अपडेट देने की जरूरत नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरा वो काम किया या नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे मैसेज ट्रैक करना, आशिका बोली। वो तृप्ति और बाकी लोगों से पीछा छुड़ाकर आ तो गई थी, लेकिन उसे पता था कि उसके भागने के बाद भी मुसीबत कम नहीं होने वाली है। आशिका ने अपना सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर भी एक हैकर होने की वजह से वो टेक्निकली इतने एडवांस थे कि अपने मैसेज को पढ़ सकते थे। मैं तो चेक करना ही भूल गया, रिहान ने सिर पकड़कर कहा और फिर जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ टाइप करने लगा। अगले 5 मिनट में स्क्रीन पर आशिका के मोबाइल के सारे मैसेज शो होने लगे थे और उनमें ज्यादातर मैसेज स्काई और तृप्ति के थे। स्काई के मैसेजेस को रिहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो पहले भी आशिका की हर छोटी बात के बारे में पूछने के लिए मैसेज करता रहता था। तृप्ति के मैसेज पढ़ने के बाद रिहान ने गहरी सांस लेकर कहा, मर गए आश, तुम्हारी सो कॉल्ड मॉम को ये पता है कि तुम भागकर इंडिया गई हो। हाँ, उसे एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पता नहीं है, लेकिन वो तुम्हें ढूंढने के लिए इंडिया के लिए निकल गई है। आशिका कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने स्काई को मुंबई में देखा था, तो जाहिर सी बात है कि तृप्ति भी मुंबई ही आने वाली थी। क्या तुम इस बारे में पहले से जानती हो और फिर भी बेफिक्र हो ऐश? तुम अब वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकने वाली हो, हम किसी और कंट्री जा रहे हैं। रही बात इस नए प्रोजेक्ट की, तो वो हम दूर बैठे भी कर सकते हैं, रिहान बोला। रिहान का कहना भी गलत नहीं था। आशिका के भागने के बारे में उन्हें पता चलना ही था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे उसके पीछे इतनी जल्दी मुंबई आ जाएंगे। आशिका अब किसी भी हाल में तृप्ति और स्काई के जाल में नहीं फंसना चाहती थी। अब ये फैसला उसे करना था कि वो खुद को जोखिम में डालकर मुंबई में रुकती है या फिर एक बार फिर उनसे बचने के लिए किसी और देश चली जाती है।